रात के 11 बज रहे थे, लेकिन आस्तिक अभी भी कमरे में नहीं आया था। उसने पहले ही फ़ोन करके अरुणिमा से कह दिया था कि वो आज रात को घर लेट जाएगा, तो खाने पर उसका इंतज़ार मत करना और खाना खाकर सो जाना। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो चुके थे। बस एक अरुणिमा ही थी जो अपने कमरे में बैठकर अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा कर रही थी। उसे कॉलेज का असाइनमेंट जमा करना है, पर यह बहुत मुश्किल है। उसने इसके लिए कीर्ति की भी मदद लेने की सोची, पर कीर्ति खुद अपने असाइनमेंट में बिजी थी। अरुणिमा ने एक नज़र घड़ी पर डाली, रात के 11:30 बज रहे थे। वो परेशान होते हुए कहती है, 11:30 बज गए, अब मैं इसे कब पूरा करूँगी? ये इतना मुश्किल क्यों है? पर जो भी हो, मुझे इसे पूरा तो करना ही होगा ना, वरना प्रोफेसर बख्शी मुझे पूरी क्लास के सामने डांटेंगे। अरुणिमा फिर से अपना असाइनमेंट करने में लग गई और वो पढ़ाई में इतनी खो गई थी कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कोई कमरे में दाखिल हो चुका है। अचानक से अरुणिमा को अपने सर पर एक हाथ महसूस होता है। वो डर से कांप जाती है और हैरानी से पीछे पलट कर देखती है। सोफे पर आस्तिक को बैठा देख अरुणिमा जल्दी से खड़ी हो जाती और कहती है, आप कब आए? आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? आस्तिक ने अरुणिमा के सवालों का जवाब नहीं दिया, उल्टा वो तो अरुणिमा के असाइनमेंट के पेपर्स में से एक पेपर उठाता है और उसे देखने लगता है। आस्तिक ने उस असाइनमेंट के पेपर को देखते हुए कहा, इतना भी मुश्किल नहीं है। अरुणिमा ने मुंह बनाते हुए कहा, मुश्किल का तो पता नहीं, पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आस्तिक एक पेन उठाता है और हँसते हुए कहता, इधर आओ, मैं बताता हूँ। आस्तिक खाली पेपर लेता है और अरुणिमा को अपने साथ बैठाता है। वो उस खाली पेपर पर कुछ कुछ लिखकर अरुणिमा को समझा रहा था और अरुणिमा किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसकी हर बात मान रही थी। अरुणिमा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आस्तिक उसकी पढ़ाई में मदद कर रहा है। कुछ देर बाद अपनी सारी बात समझाने के बाद और असाइनमेंट पूरा कर देने के बाद आस्तिक ने कहा, हो गया। जैसे ही अरुणिमा का असाइनमेंट कम्प्लीट होता है, वो हैरानी से आस्तिक को देखने लगती है। इस असाइनमेंट के लिए वो पिछले 3 घंटे से पागल हो रही थी और आस्तिक ने इसे कुछ ही मिनट में सॉल्व कर दिया। वो खुश होते हुए आस्तिक को देखती है और फिर अपने मन में कहती है, ये इतने दरिया दिल कैसे हो रहे हैं? तभी दूसरे ख्याल ने अरुणिमा को सोचने पर मजबूर कर दिया, कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है, राजा साहब कभी भी मेरे लिए एक पहेली से कम नहीं रहे हैं। अरुणिमा जल्दी से सारे पेपर को समेटकर फाइल में लगाती है और आस्तिक को थैंक यू कहती है। आस्तिक अपनी जगह से उठता है और अपनी कोट को निकालने लगता है। अरुणिमा भी फाइल्स को वापस अपने बैग में रख लेती है। आस्तिक अपना कोट और टाई वहीं सोफे पर फेंक कर वॉशरूम चला जाता है। अरुणिमा उसके कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में डालकर उसके लिए रात में सोने के कपड़े निकालने के लिए अलमारी के पास जाती है। तभी अरुणिमा को पीछे से आस्तिक ने अपनी बाहों में पकड़ लिया। अरुणिमा अच्छी तरह से आस्तिक के स्पर्श को पहचानती थी। अरुणिमा थोड़ी सी कसमसाती है, लेकिन वो अभी भी आस्तिक का नाइट ड्रेस ढूंढ रही थी। आस्तिक अरुणिमा की कमर पर कलाकारी कर रहा था, जिससे अरुणिमा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसने अपने मन में सोचा कि लगता है आज आस्तिक अच्छे मूड में है। आस्तिक की हरकतें बढ़ रही थीं। अरुणिमा ने हंसते हुए कहा, क्या कर रहे हैं? लेकिन अरुणिमा के सवालों के जवाब देने की बजाय आस्तिक की हरकतें और ज्यादा बढ़ गईं और वो अरुणिमा के गर्दन पर अपने होठों का स्पर्श छोड़ने लगा। तभी अरुणिमा को कुछ याद आता है और वो आस्तिक से कहती है, कार्बामाज़ेपीन एक ऐसी दवाई है जो मेंटली डिस्टर्ब लोगों को दी जाती है। अरुणिमा की बात सुन आस्तिक की पकड़ उसके कमर पर ढीली हो जाती है। वो हैरानी से अरुणिमा को देखता है। आस्तिक अरुणिमा को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और उसकी आंखों में गुस्से में देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने अभी? अरुणिमा बहुत दिनों बाद आस्तिक का ये रूप देख रही थी। उसने डरते हुए आस्तिक को देखकर कहा, आपको कुछ हुआ है क्या? अरुणिमा की बात सुनकर आस्तिक का पूरा चेहरा गुस्से से सख्त हो जाता है। सुबह जब अरुणिमा ने आस्तिक के स्टडी रूम में वो दवाइयाँ देखी थीं, तब से ही उसका मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। आस्तिक के ऑफिस जाने के बाद वो फिर से उसके स्टडी रूम में गई थी और उस दवाई को लेकर वो उसके बारे में खोजने लगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अरुणिमा के पास फोन नहीं था, इसलिए वो गूगल पर इसके बारे में जानकारी नहीं हासिल कर सकती थी। अगर वो कीर्ति से पूछती तो कीर्ति उसी से 10 सवाल कर लेती, इसलिए उसे सबसे ज्यादा बेहतर रास्ता पृथ्वी नजर आया, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और इस बारे में जानता भी होगा। इससे पहले कि पृथ्वी हॉस्पिटल के लिए निकल पाता, अरुणिमा पृथ्वी के सामने आ जाती है और उससे उन दवाइयों के बारे में पूछती है। पृथ्वी सबसे पहले उन दवाइयों को देखता है और हैरानी से कहता है, ये दवाइयाँ तुम्हारे पास कहाँ से आईं? अरुणिमा चाहती तो पृथ्वी को इस बारे में बता सकती थी, लेकिन उसने सोचा, अगर आस्तिक खुद इस समय ये बात किसी को नहीं बता रहा है तो पृथ्वी का भी ये जानना सही नहीं है। अरुणिमा ने कहा, वो कॉलेज में एक फ्रेंड है, उसने कहा है इसके बारे में पता करने के लिए, तो तुम मुझे बता सकते हो? पृथ्वी उस दवाई को देखता और कहता है, ये दवाई मेंटली स्ट्रेस को कम करता है, या फिर ये कहें कि जो लोग दिमागी तौर पर अनस्टेबल होते हैं, ये दवाई उन्हें दी जाती है, पर इस दवाई का मिलना बहुत मुश्किल है। ये दवाई बहुत ही पावरफुल है और किसी डॉक्टर की सलाह से ही इसे लेना चाहिए। पृथ्वी की बात सुन अरुणिमा हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, क्या वो सच में किसी मानसिक रोगी के साथ रह रही है? आस्तिक का इस तरीके का बिहेवियर नॉर्मल है या वो सच में दिमागी तौर पर एबनॉर्मल है? लेकिन अरुणिमा ने अपने मन में उठ रहे इस सवाल को आस्तिक से डायरेक्ट पूछ लिया।
आस्तिक कितने समय से उसके साथ सही तरीके से पेश आ रहा था। ना तो उसे मारता था और ना ही ऊंची आवाज में बात करता था, इसलिए अरुणिमा को लगा कि अब आस्तिक उसके साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन इस सवाल के साथ ही आस्तिक का पूरा चेहरा साफ हो गया और वो गुस्से में अरुणिमा को देखने लगा। आस्तिक ने एक जोरदार तमाचा अरुणिमा के गाल पर मार दिया, जिससे वो फर्श पर जा गिरी।